हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा मुंबई वापस आ चुकी थी। अगली सुबह मान्या की बातों से बचने के लिए उसने इंडियन ड्रेस पहनी थी, लेकिन सारा को ये पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कृषा की ड्रेस चेंज करवा दी और उसे अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर चलने के लिए तैयार किया। पहले जहां कृषा ने सूट पहना था, वहीं सारा के जिद करने पर अब वो शॉर्ट्स में थी। वहीं युग की नज़र भी कृषा पर थी। वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए कृषा को देख रहा था। जब कृषा ने ड्रेस चेंज की तो युग को भी अच्छा लगा। दैट्स लाइक माई वाइफ। असली तमाशा तो तब होगा जब सारा शब्द के साथ राणा मेंशन में रहेगी। इसके लिए मुझे सबसे पहले दादू को मनाना होगा, युग ने अपनी आईपैड स्क्रीन पर देखते हुए कहा। पहले उसने इस तरह का कोई प्लान नहीं किया था कि सारा भी राणा मेंशन में रहेगी, लेकिन जिस तरह से सारा कृषा को संभाल रही थी, उसके बाद युग ने उसी वक्त सारा को वहां कृषा के पास रखने का प्लान बनाया। युग को आगे की फुटेज देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मलिक उसके पास आ गया था और वो उसके साथ चला गया। वहीं सारा और कृषा रूम में मौजूद थी और कृषा घूमकर अपनी ड्रेस दिखा रही थी। अब तो ठीक है ना, कैसी लग रही हूँ मैं? कृषा ने सारा से पूछा। ठीक वैसे ही जैसी हमारी कृषा लगती है, सारा ने जवाब दिया और फिर कृषा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहती, इसीलिए युग से दूर आज यहाँ पर हूँ, कृषा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसने सारा की बातों को अलग तरीके से लिया था। उसके हिसाब से अगर वो माफिया ट्रेनिंग लेती तो वो खुद को युग के लिए बदल रही थी। उसकी बात सुनकर सारा हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर बोली, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ रही हो। युग तुम्हें बदलने के लिए ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, वो तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता है। सिर्फ युग ही नहीं, मैं, दादू, अम्मू, हम सब यही चाहते थे कि तुम स्ट्रांग रहो, बिल्कुल अपने मॉम डैड की तरह। लेकिन अर्जुन भैया ने अपनी जिद के चलते तुम्हें क्या बना दिया? वो भी गलत नहीं है। मॉम डैड के जाने के बाद उनका मेरे लिए इनसिक्योर होना गलत नहीं है। अगर हमारे मॉम डैड एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ बिताते तो आज वो इस दुनिया में जिंदा होते, हमारे साथ होते और हर एक खुशी को महसूस कर रहे होते, कृषा ने जवाब दिया। सारा अच्छे से समझ रही थी कि कृषा इस वक्त अर्जुन की बोली बोल रही है। सारा ने भी उससे आगे बहस करना सही नहीं और हाँ मिस सिर हिलाकर कहा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, फिलहाल के लिए मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। लेकिन युग, क्या मुझे बाहर जाने की परमिशन है? कृषा ने हिचकिचाते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राणा मेंशन के आगे इतना बड़ा गार्डन एरिया और रनवे बना हुआ है कि उसमें ही वॉक कर लोगी तो काफी होगा, सारा ने जवाब दिया और कृषा को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। कृषा ने राणा मेंशन में लगभग 15 दिन बिताए थे, फिर भी उसने पूरे घर को ठीक से नहीं देखा था। राणा मेंशन के आगे काफी खाली जगह थी, जहां गार्डन एरिया, चॉपर के लिए रनवे, पार्किंग एरिया के आगे काफी जगह खाली छोड़ी गई थी। कृषा सारा के साथ बाहर आई। राणा मेंशन बाहर से सच में बिल्कुल किसी महल की तरह लगता था और आगे काफी खाली जगह भी थी। राणा मेंशन में रहने वाले लोग भी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाने के बजाय वहीं पर वॉक कर लेते थे। कृषा और सारा जब थोड़ा आगे गई तो उन्हें मिस्टर हर्षवर्धन राणा दिखे। इतने दिनों में कृषा का उनसे सामना काफी कम बार हुआ था। कृषा को देखकर हर्षवर्धन राणा ने अपनी नजरी घुमा ली। सारा ने हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर पूछा, ये युग के दादू है ना? हाँ वही है, हमें देखकर इन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, हम दूसरी तरफ चलकर वॉक करते हैं, कृषा ने जवाब दिया। हर्षवर्धन जी के इस तरह नजरें घुमाने पर कृषा के चेहरे पर उदासी थी। वो दूसरी तरफ जाने लगी तभी सारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका। हर बार दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं, सारा ने सख्त आवाज में जवाब दिया और कृषा का हाथ पकड़कर उसे जानबूझकर हर्षवर्धन जी की तरफ ले जाने लगी। उस तरफ जाते हुए सारा ने धीरे से कहा, इन्हें हमसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, चलो मिलकर आखिर पूछ लेते हैं कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो युग को रोका क्यों नहीं। कृषा सारा का बिहेवियर अच्छे से जानती थी, वो ना तो किसी से डरती थी और ना ही उसे किसी से कुछ पूछने में डर लगता था। कृषा सारा को रोकना चाहती थी पर सारा तब तक हर्षवर्धन जी के पास पहुंच गई। वो उनके सामने खड़े होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, हेलो मिस्टर सीनियर राणा। हेलो फेक माफिया प्रिंसेस, हर्षवर्धन जी ने उसी एटीट्यूड में जवाब दिया। फिर उन्होंने कृषा की तरफ देखा, जो उनसे कुछ कदम की दूरी पर नजरें झुकाकर खड़ी थी। हर्षवर्धन जी कृषा के पास बढ़े और उसके पास जाकर कहा, अच्छा तो उसने तुम्हें वापस भेज दिया है। देखा जाए तो बिल्कुल ठीक किया है। उसे तुम्हारी जरूरत उतनी ही है जब उसे किसी पड़ाव को पार करना होता है। बाकी उसे तुम जैसे गार्बेज को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन जी के शब्द काफी सख्त और कड़वे थे, जिन्हें सुनकर कृषा की आंखें नम होने लगी। कृषा ने भीगी पलकों से हर्षवर्धन जी की तरफ देखा और जवाब में धीरे से कहा, अगर मेरी जरूरत उतनी ही थी तो फिर ये शादी करने का दिखावा करने की क्या जरूरत थी मिस्टर राणा। कृषा की आंखों में आंसू देखकर भी हर्षवर्धन का दिल नहीं पिघला, बल्कि उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सर्द आवाज में कहा, जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, ताकि तुम्हारे परिवार को ये एहसास दिलाया जा सके कि दुश्मनी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर कोई वादा किया जाता है तो उसे निभाया जाता है। हालात चाहे जो भी हों, एक बार दी हुई जबान से जो पीछे हट जाए वो इंसान मुंह लगाने के काबिल नहीं होता। बरसों पहले मेरे डैड ने तुम्हारे दादू के पापा से वादा किया था कि उनके पोते और मेरी बेटी जानी हरलीन की शादी तुम्हारे पापा से होगी। तुम्हारे दादू की और मेरी दोस्ती में दरार पड़ चुकी थी, उसके बावजूद हमने कभी भी उनके वादे को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन तुम्हारे बाप ने एक ऐसे औरत के साथ चक्कर चलाया जो कि एक बच्चे की माँ थी, ऊपर से वो शादीशुदा भी नहीं थी। उस चक्कर में मेरी हरलीन को बहुत कुछ झेलना पड़ा। फिर भी तुम्हारी माँ और युग की माँ के बीच में भी इसी तरह का एक वादा हुआ था कि जो रिश्ता हरलीन और शांतनु के बीच नहीं बना वो बच्चों के बीच बनाएंगे और शादी करेंगे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरे पोते ने अपना वादा निभाया है, सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, तो आगे से कुछ भी कहने से पहले दो बार सोच लेना। हर्षवर्धन जी ने कृषा को काफी कुछ कह दिया था। ऐसे लग रहा था कि ये बरसों की भड़ास थी जो वो अपने दिल में दबा कर बैठे थे, और मौका मिलने पर उन्होंने सारी बातें कृषा को सुना दी। कृषा की आंखों में कहत आंसू बह गए थे। हर्षवर्धन जी ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर आगे कहा, बदकिस्मती से तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह दिखती है, ना चाहते हुए भी उस औरत का धोखा भूले से नहीं भूलता। मेरी हरलीन से दोस्ती करके उसने धोखा दिया था उसे, और उसी के मंगेतर से शादी कर ली। तुम दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन है कि सिर्फ शक्ल से ही मासूम हो, बाकी दिल में कितनी चालाकी छुपी है ये हम में से किसी से भी छुपा नहीं है, हर्षवर्धन जी ने कठोर शब्दों में कहा और फिर वहाँ से चले गए। कृषा को सारी बातें तो नहीं पता चली थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि इन सब के चक्कर में हरलीन का बहुत दिल दुखा है। सालों पहले जरूर उनके बड़ों ने हरलीन और कृषा के पापा शांतनु की शादी तय की थी, लेकिन बीच में कृषा की माँ कृतिका आ गई थी। कृषा ये बात पहले से जानती थी कि अर्जुन उसका हाफ ब्रदर है, फिर भी उसने उसे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया। न केवल उसने भाई का फर्ज निभाया, बल्कि उसकी जिंदगी में माँ बाप की कमी को भी पूरा किया था। कृषा की आंखों से बह रहे आंसुओं से सारा सब समझ गई थी कि उसके दिल में काफी कुछ चल रहा है। सारा उसके पास आई और कृषा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, इन्होंने अपनी तरफ से कहानी को रखा है और कभी भी एक तरफा कहानी सुनने के बाद डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं सारा, मेरी मॉम ऐसी नहीं थी, वो किसी को धोखा नहीं दे सकती, कृषा ने रोते हुए कहा। कृषा से अब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पिछले 2-3 दिनों से वैसे भी वो काफी कुछ झेल रही थी। पहले अचानक उसके सामने पिया का तड़प तड़प के मरना और फिर उसके बाद युग का उसे खुद से अलग करना, इन सबको भूलकर कृषा मूव ऑन करने की कोशिश कर ही रही थी कि हर्षवर्धन ने उसके सिर पर एक और बम फोड़ दिया था। कृषा की माँ भी सच्चाई अलग तरीके से उसके सामने आई थी और ये उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कृषा दौड़ते हुए वापस अपने रूम में जाने लगी कि तभी वो मान्या राणा से टकरा गई। मान्या को तो वैसे भी कृषा से दुश्मनी निकालने का मौका चाहिए था। युग ने कृषा को यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया था, उससे बेहतर मौका उसे और क्या मिल सकता था। कृषा जब उससे टकराई तो सॉरी बोलकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन मान्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। सिर्फ एक सॉरी से तो काम नहीं चलने वाला है मैडम, मान्या ने सख्त आवाज में कहा और कृषा का हाथ पकड़कर लगभग मोड़ दिया था। वही युग अपनी मीटिंग से फ्री हो चुका था, उसे नहीं पता था कि गार्डन एरिया में हर्षवर्धन जी और कृषा के बीच क्या हुआ था। इन सब से बेखबर उसने सिर्फ इतना देखा था कि मान्या ने कृषा का हाथ बेरहमी से पकड़कर मोड़ दिया था। कृषा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब देखने के बाद युग की निगाहें सर्द हो गई। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हारी मारना। युग दूर है, क्या लगता है मान्या को कृषा जवाब देगी या सारा? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।